नमस्कार भारत, तारीख 7 मई, दिन रविवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शिमलाना गांव में जातीय संघर्ष के बाद तनाव, अब तक 17 लोग गिरफ्तार।
कल की घटना में प्रशासन ने मुस्तैदी तो दिखाई, फिर भी एक व्यक्ति की जान चले गई। जान छोड़े दीजिए, जांच में जो भी सामने आएगा उस हिसाब से देखा जाएगा।
केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को मंत्री पद से हटाया। कपिल मिश्रा बोले,
जो नाम मैंने उनको बोले थे वो नाम कल जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वजह है। इतना जो डिले हुआ है टैंकर घोटाले में, किन लोगों के कारण हुआ है, उसके पीछे कौन लोग थे वो, और आज भ्रष्टाचार के किन किन मामलों पे मैंने अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की।
याद करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज लीला सेठ को, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के शिमलाना गांव में शुक्रवार को हुए जातीय संघर्ष के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच ये विवाद हुआ था, जो हिंसक हो गया। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। भारत प्रशासित कश्मीर के कुलगाम जिले के मीरबाजार में शनिवार देर रात एक गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस कर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर कुलगाम के मीर बाजार इलाके में पुलिस बलों पर फायरिंग तब हुई जब पुलिस श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक सड़क हादसे की वजह से लगे ट्रैफिक जाम को हटाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान कार में सवार चरमपंथियों ने पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस का एक जवान मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि इस हमले में 2 नागरिकों की भी मौत हो गई है। पुलिस ने मारे गए चरमपंथी से एक हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। सीरिया में 6 साल से चल रहे युद्ध में रूस की अगुवाई वाली पहल के बाद लड़ाई में कमी आई है। गुरुवार को रूस की अगुवाई में ईरान और तुर्की के समर्थन से सीरिया में सेफ जोन को लेकर समझौता किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि शुक्रवार आधी रात के बाद से 15 उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि पूरे सीरिया में कुछ छिटपुट झड़पों को छोड़ दिया जाए तो हिंसा में कमी आई है। राजनीतिक और सशस्त्र विद्रोही गुटों का कहना है कि समझौते की कोई वैधता नहीं है। विद्रोहियों के कब्जे में रहने वाले खालिद अल अली ने इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये संघर्ष विराम एक झूठ है। सरकार के पास कोई समझौता या वादा नहीं है और असद संघर्ष विराम के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। उन्होंने आज आपको कहा है कि यहाँ संघर्ष विराम है और 1 घंटे बाद विमान लोगों पर बमबारी करने लगेंगे। नागरिक सोचते हैं कि संघर्ष विराम है, वो बाजार चले जाएंगे, बाहर रहने लगेंगे और जैसे ही वो बाहर जाएंगे सरकार उन पर बमबारी कर देगी। ये थे विद्रोहियों के कब्जे में रहने वाले खालिद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इस्लामिक चरमपंथी गुट बोको हराम ने उत्तरी पश्चिम नाइजीरिया से 3 साल पहले अगवा की गई 276 चिबॉक स्कूली लड़कियों में से 80 को रिहा कर दिया है। यह रिहाई कथित तौर पर सरकार के साथ बातचीत के बाद हुई है। हालांकि इन 80 लड़कियों की रिहाई के बावजूद 195 लड़कियां अब भी लापता हैं। बीबीसी सूत्रों के मुताबिक ये सभी लड़कियां अब नाइजीरियन सेना के संरक्षण में हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में हजारों महिलाओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को फौरन हटा दिया जाए और ताजा चुनाव करवा कर लोकतंत्र की बहाली की जाए। विपक्ष की महिला नेताओं ने अपनी मांगों की एक चिट्ठी सरकार के मंत्री को सौंपी। एक प्रदर्शनकारी महिला जोराया सेंशे ने कहा, हम चुनाव चाहते हैं जिससे हम मदुरे को मतदान के जरिए हटा सकें। वो आंकना नहीं चाहते लेकिन वो जानते हैं कि वो हार रहे हैं। उनकी अलोकप्रियता 85% है जो पूर्व राष्ट्रपति की कभी नहीं रही। मैं विपक्ष से हूं लेकिन आप इस बात को जरूर स्वीकार करें कि चावेस की लोकप्रियता ज्यादा है। ये थे जोराया सेशे के शब्द। फ्रांस में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान होगा। राष्ट्रपति की दौड़ में एक उम्मीदवार यूरोपीय संघ के हिमायती उदारवादी नेता इमैनुअल मैक्रों हैं, जो कभी चुनाव नहीं जीते हैं। दूसरी ओर मैरीन ले पेन धुर दक्षिणपंथी की नेता हैं, जो वैश्वीकरण से ज्यादा प्रभावित नहीं है और यूरोपीय संघ से फ्रांस के रिश्तों में बदलाव की बात करती हैं। आज होने वाले चुनाव के नतीजे 11 मई को आएंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। नमस्कार भारत की शुरुआत आज हम भारत की खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के शिमलाना गांव में शुक्रवार को हुए जातीय संघर्ष के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। पुलिस के मुताबिक अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और कई अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक भी आज स्थिति का जायजा लेने के लिए सहारनपुर जा रहे हैं। और जानकारी के साथ है समीर आत्मज मिश्र।
सहारनपुर में पिछले दिनों सांप्रदायिक संघर्ष का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब दो विभिन्न जातियों के आमने सामने आने और उनके बीच हुए हिंसक संघर्ष ने एक बार फिर इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। शिमलाना गांव में दलित समुदाय के लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा का विरोध किया और फिर यही विरोध हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र दुबे दलितों के विरोध की वजह बताते हैं।
फिलहाल का विरोध इस तर्क पे था कि हमने भी इसके पहले यहाँ पर कोई जयंती का कार्यक्रम करने की अलग से मोर्च स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये लोग क्यों जा रहे हैं। इस चीज को लेकर के उसने अपना पुलिस को बुलाया, पुलिस ने वहाँ पे डीजे को अलग किया, फिर आगे इसी क्रम में पथराव हुआ। उस पथराव में पत्थर लगने से युवक घायल हो गया, इसके बाद में डेथ हुई।
सुभाष चंद्र दुबे के मुताबिक दलित समुदाय के लोगों ने गांव से शोभा यात्रा निकालने का विरोध किया और शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया, जिससे कई गांवों के क्षत्रिय समाज के लोग वहां पहुंच गए और फिर दोनों ओर से हिंसक कार्रवाई होती रही। बाद में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पहुंचने के काफी बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई लोगों के घर जला दिए गए और पुलिस की मौजूदगी में न सिर्फ आगजनी और पत्थरबाजी हुई बल्कि गोलियां भी चली। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हालांकि एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे कहते हैं कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है।
कुछ एक घंटे के उपद्रव के बाद से पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई भी किसी प्रकार का करंट में तनाव नहीं है। एहतियातन पुलिस बल लगाया गया है और 17 उपद्रवी चिन्हित करके रात में ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। अन्य जो लोग बाकी उपद्रव में थे, सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लोगों की गिरफ्तारी होगी। इस मामले में सामने तैयार की जा चुकी है।
सहारनपुर में पिछले महीने भी शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ था और तब दो संप्रदाय आमने सामने थे। सहारनपुर से बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल और उनके भाई भी इस मामले में अभियुक्त बनाए गए थे। सहारनपुर में बार बार होने वाले संघर्ष पर राघव लखनपाल कहते हैं,
देखिए वो तो सब जांच का विषय है कि कहां से क्या शुरू हुआ, लेकिन हाँ निश्चित रूप से दुर्भाग्यवश पिछले 20-25 दिन में एक महीने में ही कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और पहले तो ये था, जो पिछली घटना थी उसमें तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमी रही, लेकिन कल की घटना में प्रशासन ने मुस्तैदी तो दिखाई, फिर भी एक व्यक्ति की जान चले गई जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हो सकता है कोई शरारती तत्व हो जो इंस्टिगेट कर रहे हो, लेकिन जान छोड़े दीजिए, तो वो जांच में जो भी सामने आएगा उस हिसाब से देखा जाएगा।
बहरहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण में और शांतिपूर्ण जरूर बता रही है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। रविवार को स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के गृह सचिव देवाशीष पांडा और पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह भी सहारनपुर पहुंच रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
तो जैसा कि आपने सुना, सहारनपुर जिले के शिमलाना गांव में जातीय संघर्ष के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली, पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ाई और अब कपिल मिश्रा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से कपिल मिश्रा की छुट्टी कर दी है। वो पर्यटन मंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे। खबरों के मुताबिक राजेंद्र पाल गौतम और कैलाश गहलोत को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने कपिल मिश्रा से बातचीत की तो कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी नहीं दी गई है। कपिल मिश्रा का यह भी कहना है कि वो कथित टैंकर घोटाले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज मीडिया के सामने रखेंगे। सुनिए कपिल मिश्रा ने क्या कहा।
दो चीजें हैं सर, अगर परफॉर्मेंस की बात है तो पिछले एक महीने के अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं पानी के बारे में वो सारे देख ले, और पिछले दो साल के उनके जितने भी बयान हैं वो सारे देख ले, तो उससे पता लग जाएगा या तो वो पिछले दो साल से झूठ बोल रहे हैं या फिर आज कुछ और बात को पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरी आज सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी उनके घर पे। उसमें मैंने उनको ये बोला था कि एक साल पहले मैंने जल बोर्ड की रिपोर्ट बना के दी थी और इतना डिले हो गया है, इसके लिए मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा है। वो लेटर भी सुबह ही मेरी ट्वीट पे आपको मिल जाएगा, 10 बजे मैंने वो लेटर रिलीज किया था। तो और मैंने उनसे भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के बारे में चर्चा की थी जिसको लेकर मेरे मन में गुस्सा था। तो ये बात जरूर आज अरविंद केजरीवाल जी से आज सुबह हुई थी।
ये एक वजह हो सकती है क्या?
मेरे को लगता है केवल और केवल यही एक वजह है, क्योंकि जो नाम मैंने उनको बोले थे वो नाम कल जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वजह है।
हाँ, आप ये कहने वाले हैं कल मीडिया में एक्सपोज करने वाले हैं कि ये वाटर लॉबी जो है,
मैं ये बताने वाला हूँ कि इतना जो डिले हुआ है टैंकर घोटाले में किन लोगों के कारण हुआ है, उसके पीछे कौन लोग थे वो, और आज भ्रष्टाचार के किन किन मामलों पे मैंने अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की।
लेकिन कपिल जी, अभी पार्टी एक बड़ी मुश्किल से निकली है और ऐसा लग रहा है कि एक और बड़ी मुश्किल में फंस गई है।
नहीं, इसमें तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है, हम लोग तो सब लोग पार्टी आंदोलन सब भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ही बनाया है, तो इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। मैं सन 2004 से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो ये तो लाठी डंडे सब खाए हैं, तो इसीलिए इसमें तो कोई मुश्किल की बात ही नहीं है, ये लड़ाई तो लड़नी ही है।
तो आप पार्टी के फोरम पे अपनी बात रखेंगे?
बिल्कुल, पार्टी के अंदर, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मेरी है, मैं फाउंडर मेंबर हूँ इस पार्टी का, और कूड़ा हटाना ही हटाना है, झाड़ू चलानी ही चलानी है पार्टी के अंदर।
माना कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी पार्टी का, उसका कोई से नहीं होता इसमें?
आज तो कोई पीएसी नहीं हुई है और ना ही आज विधायकों की जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई चर्चा की गई है इस बारे में, इसीलिए मेरे को अभी तक इस फैसले की कोई जानकारी नहीं है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार से कपिल मिश्रा की छुट्टी कर दी। कपिल मिश्रा से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। झारखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक मंत्री का पद बीते 28 महीने से खाली है, लेकिन सरकार किसी को भी मंत्री नहीं बना रही। परिणाम यह है कि राज्य में मंत्रिपरिषद अपने न्यूनतम आकार से भी छोटा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री 12वें मंत्री की नियुक्ति कर इस विवाद को खत्म कर सकते हैं। रांची से रवि प्रकाश की ये विशेष रिपोर्ट।
झारखंड की भाजपा सरकार विवादों में है, वजह बना है रघुवर दास के कैबिनेट का आकार। दरअसल झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री समेत कुल 11 मंत्री हैं, यह संख्या 12 होनी चाहिए, लेकिन सीएम रघुवर दास ने अपने मंत्रिमंडल में 12वें मंत्री की नियुक्ति का मामला पिछले 28 महीने से लटका रखा है। जानकार इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हैं। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने बीबीसी को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 164 के मुताबिक किसी भी राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते। पीडीटी आचार्य ने कहा, मंत्रियों की संख्या को लेकर झारखंड में पहली बार जीत नहीं हो रही। इससे पहले अर्जुन मुंडा व हेमंत सोरेन पर भी मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने के आरोप लग चुके हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने बीबीसी को बताया कि मंत्रिमंडल में सिर्फ 11 मंत्री होने के मुद्दे पर तत्कालीन राज्यपाल वेद मारवा ने उस समय की अर्जुन मुंडा सरकार को बर्खास्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद मुंडा ने आनन फानन में अपने मंत्रिमंडल के 12वें मंत्री को शपथ दिलाई। अर्जुन मुंडा की ही सरकार को तत्कालीन राज्यपाल एमओएच फारूक ने साल 2010 में भी ऐसी ही हिदायत दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के नेता बाबूदा मरांडी ने कहा कि बीजेपी की सरकार संविधान और कानून को नहीं मानती, राज्यपाल को इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा,
जो बीजेपी की सरकार है ना, वो संविधान को मानती है ना वो कानून को मानती है, और इसी के कारण ही आज राज्य के अंदर में जो 12 मंत्री का प्रावधान होते हुए भी उन्होंने एक पद को खाली छोड़ रखा है। तो हम चाहेंगे कि भाई राज्य सरकार को देखना चाहिए, और राज्य सरकार अगर नहीं देख रही है तो राज्य के जो महामहिम है, राज्य के राज्यपाल है, उनको ये पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर वो संवैधानिक नहीं है तो फिर इस सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए।
राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि रघुवर कैबिनेट के निर्णयों की लीगल वैलिडिटी नहीं है। मंत्रिमंडल की न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं कर सरकार ने अपनी संवैधानिक वैलिडिटी को खुद ही चैलेंज किया है। दरअसल 28 दिसंबर 2014 को शपथ लेने के बाद से आज तक सीएम रघुवर दास ने 12वें मंत्री को लेकर कभी उत्सुकता नहीं दिखाई। जानकार इसे उनकी राजनीतिक मजबूरी बताते हैं, क्योंकि कई विधायक मंत्री पद पाने की लालसा रखते हैं, ऐसे में किसी एक का चुनाव कठिन काम है। बहरहाल जाने माने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का मानना है कि रघुवर दास चाहें तो 12वें मंत्री की नियुक्ति कराकर इस विवाद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन क्या रघुवर दास ऐसा करेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
झारखंड के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का जिक्र करते हैं। फ्रांस में आज यानी कि रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान होना है। राष्ट्रपति पद की दौड़ में एक उम्मीदवार यूरोपीय संघ के हिमायती उदारवादी नेता इमैनुएल मैक्रों हैं, जबकि दूसरी उम्मीदवार मैरिन लपेन धुर दक्षिण पंथी की नेता रही हैं। चुनाव आयोग ने मीडिया और आम लोगों से अपील की है कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इमैनुएल मैक्रों की प्रचार टीम से हैक हुए ईमेल और दस्तावेजों को प्रसारित ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वहां पर चुनाव होना है और आयोग ने एक बयान जारी करके लोगों से जिम्मेदारी की भावना दिखाने को कहा है। आयोग के बयान में कहा गया है कि अगर किसी ने सलाह की अनदेखी की तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। मैक्रों के सहयोगियों ने हैकिंग को फ्रांस के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास बताया है। पेरिस के एक व्यक्ति कहते हैं, लूच विडाल नाम के इस शख्स का कहना है कि मैं इसे लेकर हैरान नहीं हूं। हम जानते हैं कि विदेशी शक्तियां राष्ट्रपति चुनाव में भूमिका निभाना चाहती हैं। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति का कहना था कि उसे लगता है कि राजनेताओं के बीच हमेशा एक दूसरे पर प्रहार करने की प्रवृत्ति होती है। पहले ऐसा करने के दूसरे तरीके होते थे और आज के दौर में ये कंप्यूटर के माध्यम से होता है। तो हमारी नज़र फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव पर रहेगी। इसकी खबरें आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर भी पा सकते हैं। अब यहीं पर कार्यक्रम में हम अखबारों का जिक्र करते हैं। तृप्ति श्रीवास्तव, आप अखबार पढ़ चुकी हैं, आज की सबसे बड़ी खबर अखबारों के माध्यम से क्या है?
देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर अगर देखी जाए तो है तो वो कश्मीर में जो हमला हुआ है वो है, जो आज हमारे कार्यक्रम में भी वो खबर है। लेकिन उसके अलावा जो और भी खबरें हैं, ख़ास तौर से आज तमाम अखबारों में जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं झाड़ू लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में शहर के 43% की खराब रेटिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बालू अड्डा इलाके में खुद झाड़ू लगाई शौचालयों का सर्वेक्षण किया, और ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ये लखनऊ नगर निगम की आंखें खोलने के लिए किया है, ताकि उनका भी अगली बार नाम आए शहर का।
लेकिन देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ योगी सरकार ने जो महापुरुषों के नाम की छुट्टियां रद्द की हैं उसकी जो कॉपी है वो दिल्ली सरकार ने की। अब दिल्ली सरकार जो उनका चुनाव निशान है झाड़ू, वो काम अब योगी सरकार कर रही है।
बिल्कुल। और एक बहुत ही दिलचस्प खबर जो इंडियन एक्सप्रेस ने आज छापी है अपने अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि आरएसएस की स्वास्थ्य इकाई आरोग्य भारती अपने गर्भ विज्ञान संस्कार योजना के तहत ये बता रही है कि एक उत्तम संतति यानी अच्छी संतान कैसे पाई जाए, और इसके लिए 3 महीने शुद्धिकरण माता पिता का ग्रहों की दिशा के अनुसार उनका मिलना और बच्चे की कल्पना के बाद क्या क्या संयम रखना, खाने पीने के नियम। और खास बात यह है जो अखबार लिखता है कि इसके लिए दलील ये दी जा रही है कि उनका उद्देश्य उत्तम संतान पैदा कर समर्थ भारत बनाना है।
वाह, क्या बात है।
अच्छा, जनसत्ता में जो आज खबर, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को जो कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कश्मीर समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि जनता को ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है, और प्रधानमंत्री से उन्होंने अपील की है कि वो घाटी को संकट से बाहर निकालने की कोशिश करें। एक और खबर जो है आपको बताना चाहूंगी, नवभारत टाइम्स में है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के मामले में गंभीरता से उसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के तमाम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें तमाम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करें, और अदालत ने इस साल के आखिर तक की समय सीमा इसके लिए तय की है।
दैनिक भास्कर मेरे सामने है और उसमें जो आज की खबर है कि किस तरह से जो बाहुबली फिल्म है वो किस तरह से भव्य बनी, तो ये जो डायरेक्टर हैं राजमौली वो बता रहे हैं कि कागज़ से झरना बनाया, बुलेट इंजन से रथ बनाया, 400 लोगों ने बनाई 100 फीट की भल्लाल जो मूर्ति है जो कि हमें दिखी थी वो किस तरह से बनाई, 1500 सैनिक थे लेकिन जो डायरेक्टर हैं इन्होंने इसे 225,000 बढ़ा चढ़ाकर दिखाया कि किस तरह से, और इतना जो भव्य प्रेजेंटेशन हुआ उसका उसके पीछे की पीछा क्या है वो
और कल ये भी खबर थी कि सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी भारतीय फिल्म भी ये बन गई है, 800 करोड़ से ऊपर का इसने कारोबार कर लिया। आपने देखी कि नहीं देखी ये फिल्म?
अभी तक देखी नहीं है लेकिन जैसे ही भीड़ कम होगी जाएंगे देखने के लिए। एक खबर और जिसका हम जिक्र करना चाहते हैं कि पानीपत में एक पानीपत के नजदीक एक गाँव है, सौदापुर के हर चौथे घर में है एक घर जमाई, रोजगार के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और अनोखी जगह है, इस गाँव में 600 से ज्यादा परिवारों में घर जमाई रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति श्रीवास्तव आपका।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस लीला सेठ का निधन हो गया। वो 86 साल की थी। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर मेडिकल शोध के लिए आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को दे दिया गया। जस्टिस लीला सेठ प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ की मां थी। जस्टिस सेठ के व्यक्तित्व और उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट के साथ है वात्सल्य राय।
जस्टिस लीला सेठ कानून और न्याय के क्षेत्र में बेहद आदर के साथ लिए जाने वाले इस नाम के साथ कई अहम उपलब्धियां जुड़ी हैं। साल 1930 में लखनऊ में जन्मी लीला सेठ ने साल 1958 में लंदन बार की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली महिला थी। ये महज एक शुरुआत भर थी। करीब 10 साल तक पटना उच्च न्यायालय में वकालत करने के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया। जुलाई 1978 में उन्हें न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई और अगले ही साल उनकी नियुक्ति दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। वो भारत के किसी हाई कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। बाद में वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। देश में किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली जस्टिस सेठ पहली महिला थी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण जस्टिस सेठ को याद करते हुए कहते हैं,
पहली वुमन चीफ जस्टिस बनी हिंदुस्तान में। एज अ जज अच्छा नाम कमाया, होशियार और सेंसिटिव और सेंसिबल जज थी।
एक साक्षात्कार में लीला सेठ ने बताया था कि बचपन में वो नन बनना चाहती थी लेकिन पिता राज बिहारी सेठ की मौत के बाद उनका जीवन अचानक बदल गया। लीला सेठ के मुताबिक उनके पिता उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। वो मानती थी कि कानून की पढ़ाई करना उनकी किस्मत में लिखा था। जस्टिस सेठ दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी के 3 सदस्यों में शामिल थी।
जो उन्होंने जस्टिस वर्मा कमीशन में जो काम किया रिटायरमेंट के बाद, जब ये निर्भया रेप कांड हुआ और उसके बाद ये वर्मा कमेटी बनाई गई ये सजेस्ट करने के लिए कि भाई क्या क्या कानून में बदलाव होने चाहिए, उन्होंने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रशांत भूषण के मुताबिक जस्टिस सेठ मौत की सजा की हिमायती नहीं थी, वो मानवाधिकारों की भी हितैषी थी।
देश में जो संविधान बना है उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, खासकर जो आर्टिकल 19 के सिविल राइट्स कहे जाते हैं, उसके बारे में उनकी बहुत दृढ़ व्यू थी। मेरी राय में उनकी विरासत यही मानी जानी चाहिए कि आज वो सारे संविधान के जो राइट्स हैं वो आज खतरे में हैं, और वो इसको बहुत अहम और महत्वपूर्ण मानती थी।
जस्टिस सेठ अच्छी लेखिका भी थी। उनके बेटे विक्रम सेठ भी जाने माने लेखक हैं। जस्टिस सेठ के निधन पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि कानून के क्षेत्र में उनका योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा।
लीला सेठ नहीं रही। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल मलेशिया में समाप्त हुए सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर खिताबी जीत हासिल की। ब्रिटेन ने खेल के 8वें और 11वें मिनट में एलन फोर्सिन और डेविड गुडफील्ड के गोल की मदद से 2-0 की बढ़त बनाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एडी ओकेंडर ने गोल कर स्कोर 2-1 किया, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के ऑली विलर्स ने गोल कर बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 गोल और कर वापसी की कोशिश की, लेकिन वो हार को टालने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ कल भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और चौथे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले को एक तरफा रूप से 4-0 से जीता और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के लिए रुपिंदर पाल सिंह ने 17वें और 27वें मिनट में गोल किए। इसके बाद 48वें मिनट में एस सुनील और 60वें और अंतिम मिनट में तलविंदर सिंह ने गोल कर भारत को 4-0 की दमदार जीत दिलाई। उधर आईपीएल 10 में कल 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मैच में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 12 रन से हरा दिया। हैदराबाद के सामने जीत के लिए 149 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 136 रन बना सकी। हैदराबाद के युवराज सिंह ने 47 और कप्तान डेविड वार्नर ने 40 रन बनाए। पुणे के जयदेव उनादकट ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 30 रन देकर 5 विकेट झटके। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर पुणे ने बेन स्टोक्स के 39, कप्तान स्टीव स्मिथ के 34 और महेंद्र सिंह धोनी के 31 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन बनाए थे। कल खेले गए दूसरे मैच में पहले तो मुंबई इंडियंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लंदन सिमंस के 66 और किरण पोलार्ड के नाबाद 63 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 212 रन बनाए और उसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स को 13.4 ओवर में ही केवल 66 रनों पर निपटाकर 146 रनों की बड़ी जीत हासिल की।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और आपको बता दें कि आज रविवार है और आज के दिन यानी कि शाम को दिन भर कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे संग संग गुनगुनाओगे की आज की कड़ी। अब तक आप पाश्चात्य शैली की धुनों के जादूगर सी रामचंद्र के बारे में सुन चुके हैं, शंकर जयकिशन के बारे में सुन चुके हैं, सलिल चौधरी ने जिनके लिए कहा था कि ईश्वर यदि गाता तो उसकी आवाज़ हेमंत कुमार जैसी होती, उन पर कार्यक्रम सुन चुके हैं, एसडी बर्मन के बारे में सुन चुके हैं, रोशन के बारे में सुन चुके हैं, नौशाद के बारे में सुन चुके हैं। आज आप सुनेंगे मदन मोहन को, जिनकी रचना ये है। तो शाम को यतीन्द्र मिश्र ये कार्यक्रम आपके लिए लाएंगे और इस कार्यक्रम का नाम है संग संग गुनगुनाओगे। bbchindi.com का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर कि आपको कुछ विशेष खबरें पढ़ने को मिलेंगी कि बियर के लिए 50,000 लीटर इंसानों का मूत्र इकट्ठा किया गया और उसके बाद बियर बनाई गई। इस खबर को यदि पढ़ना हो तो bbchindi.com पर आइए। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मारे गए मीन बहादुर, इस खबर को भी आप पढ़ सकते हैं। और अब इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के शिमलाना गांव में शुक्रवार को हुए जातीय संघर्ष के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ था, जो हिंसक हो गया था। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। भारत प्रशासित कश्मीर के कुलगाम जिले के मीर बाजार में शनिवार देर रात एक गोलीबारी में पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर कुलगाम के मीर बाजार इलाके में पुलिस बलों पर फायरिंग तब हुई जब पुलिस श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे की वजह से लगे ट्रैफिक जाम को हटाने में लगी हुई थी। उसी दौरान कार में सवार चरमपंथियों ने पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस का एक जवान मारा गया। एक पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि हमले में 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। सीरिया में 6 साल से चल रहे युद्ध में रूस की अगुवाई वाली पहल के बाद लड़ाई में कमी आई है। गुरुवार को रूस की अगुवाई में ईरान और तुर्की के समर्थन से सीरिया में सेफ जोन को लेकर समझौता किया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि शुक्रवार आधी रात के बाद से 15 उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं ने भी इस बात की पुष्टि की है। राजनीति और सशस्त्र विरोधी गुटों का कहना है कि इस समझौते की कोई वैधता नहीं है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम 7:30 बजे दिनभर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।